मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। आज 16 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं ऋषिका सिंह, आप जयपुर राजस्थान से हैं, नेहा चौधरी, आप समस्तीपुर बिहार से हैं, ऋषभ कुमार, आप नालंदा बिहार से हैं, मनीष कुमार बड़ौत उत्तर प्रदेश से हैं और अजय जाट धार मध्य प्रदेश से हैं। तो ऋषिका, नेहा, ऋषभ, मनीष और अजय, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं न्यूज एनालिसिस पर और मुझे यकीन है कि कल की न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी। एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये, क्योंकि कुछ इस तरह के मेल आते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूं। मेरे पास 2 तरह के मेल आते हैं। कुछ मेल ऐसे होते हैं जो ये मुझसे जानना चाहते हैं कि सर, हम सुबह आपका डेली ऑडियो लेक्चर सुन लेते हैं जिसमें आप रेडियो की न्यूज भी बताते हैं और कभी कभी डीडी न्यूज की भी चर्चा कर लेते हैं, तो क्या अगर अब हम न्यूज न सुने, यानी कि रेडियो न्यूज न सुने, डीडी न्यूज न सुने, तो हमारा काम चल जाएगा? ये एक प्रश्न होता है। दूसरे तरह के वे भी प्रश्न होते हैं कि सर, आप इतने इतने अखबारों की क्लिपिंग्स भेज देते हैं, उसमें टाइम भी काफी लग जाता है, तो क्या मुझे फिर भी कोई और एक अखबार, 2 अखबार पढ़ना चाहिए? क्या मेरे लिए वह जरूरी है कि मैं अखबार भी पढ़ूं? दोस्तों, मैं देखिए बहुत ही साफ तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है, इसका जो मूल मकसद है वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, आपके अंदर क्षमता पैदा करनी है। नो डाउट कि अगर मुझे आपके अंदर क्षमता पैदा करनी है तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, कोई माध्यम तो चाहिए। बिना सहारे के मैं वो कैसे पैदा करूंगा? तो ये जो रेडियो न्यूज है, दूरदर्शन न्यूज है और इतने सारे अखबार हैं, इनको घंटों की मेहनत के बाद समेट कर जो मैं आपको 18-20 मिनट के कैप्सूल के फॉर्म में जो प्रस्तुत करता हूं, दोस्तों इसके लिए घंटों लग जाते हैं। और जो मैं प्रस्तुत करता हूं वो सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो सके। नो डाउट कि मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो उस दिन की कंप्लीट न्यूज है, एनालिसिस भी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। क्योंकि सवाल यह है कि आपने अगर रेडियो न्यूज नहीं सुनी है, जैसे उदाहरण के तौर पर, तो आज मान लीजिए कि मैं रेडियो न्यूज से 2-3 न्यूज लेकर के आपसे बातें करूंगा। नो डाउट कि ये 2-3 न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूं। मान लीजिए कि रेडियो पर 15 खबरें थी, उन 15 खबरों में मैंने सबसे जरूरी, जो सिविल सर्विस के लिए जरूरी है, 3 न्यूज छांटी और आपसे उन पर 3 पर चर्चा की। नो डाउट कि मैं इस बात से तो एग्री करूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो 3 ही थी, लेकिन ये नहीं है कि वो 12 से कुछ पूछा ही नहीं जा सकता, लेकिन सामान्य तौर पर हम मान सकते हैं, चलिए कि नहीं पूछा जाएगा, राइट? लेकिन अब ये मुझे आप बताएं कि अगर आपने रेडियो न्यूज नहीं सुनी है तो आप इस बात को कैसे समझ पाएंगे कि वो 12 क्यों बेकार है, वो 12 क्यों आपके काम की नहीं है? ये तो समझ में आपके नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि आपके समझ में यह भी नहीं आएगी कि उन 15 में से ये 3 क्यों महत्वपूर्ण है। तो न तो आपको वो समझ में आई कि बेकार कौन है, और न आपको ये समझ में आई कि ये मेरे लिए जरूरी क्यों है। तो फिर कैपेसिटी तो डेवलप नहीं हुई ना, आपके अंदर वो क्षमता तो विकसित नहीं हुई जो छांटने की क्षमता होनी चाहिए। और फिर जब मैं आपको अखबारों की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो देखिए मैं अखबारों की क्लिपिंग्स में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स, ज्यादातर यही होते हैं। नो डाउट कि ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि 2 अखबार यदि आप पढ़ते हैं नेशनल लेवल के, एक अखबार आप पढ़ लीजिए नेशनल लेवल का सामान्य अखबार और दूसरा अर्थशास्त्र पर आधारित अखबार। चलिए आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत मान लेता हूं मैं, तो आप अर्थशास्त्र इकोनॉमी वाला अखबार मत पढ़िए, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, चलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके यहां नहीं आ रहा है, हालांकि आजकल तो सब ई पेपर के रूप में सब अवेलेबल है, लेकिन चलिए मैं आपके पक्ष में बात कह देता हूं। लेकिन एक अखबार तो आप पढ़िए, क्योंकि जब आप एक अखबार पढ़ेंगे तब आपको जो घटना घटी है उस घटना की पूरी पृष्ठभूमि मालूम होगी। मैं तो न्यूज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो उस न्यूज पर जो व्यूज है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं इवेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। उस इवेंट से जो मामले उठ रहे हैं, जो उभर रहे हैं, जो देश की चाहे चिंताएं हैं चाहे उपलब्धियां हैं, वो जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उसी का रिफ्लेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आपको वो घटना नहीं मालूम है, क्रम से घटती चली आ रही है वो नहीं मालूम है, तो स्वाभाविक है कि फिर आप अगर न्यूज पेपर के क्लिपिंग्स को में से केवल कमेंट पढ़ेंगे और केवल एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपकी समझ में वो चीज उतनी नहीं आएगी। और अगर समझ में नहीं आई तो सीधी सी बात है कि कम से कम सिविल सर्विस जो आईएएस का एग्जाम है उसके एनालिटिकल आंसर आप नहीं लिख सकेंगे। इन्फॉर्मेटिव भले ही थोड़ा बहुत लिख दें, और इन्फॉर्मेटिव लिखने का कोई अर्थ नहीं है अगर उसने एनालिटिकल पूछा है तो इसलिए मित्रों उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। कोई भी अपने दिमाग में शॉर्टकट वाली बात न पालें, खासकर न्यूज को लेकर के, इसलिए क्योंकि न्यूज अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। करंट आपके टोटल सिविल सर्विस का आप उठा करके देखिए 75% कवर कर लेता है, बावजूद इसके कि बकायदे सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस तो आपको केवल विषय समझने के लिए है कि आप विषय को समझ लीजिए, उस विषय को समझने के बाद ही आप करंट को समझ पाएंगे, अदरवाइज करंट को नहीं समझेंगे। तो बहुत क्लियर है कि आपके पास सैद्धांतिक जानकारी होनी चाहिए और फिर उसका अप्लाइड फॉर्म भी मालूम होना चाहिए कि वो हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है। अगर मांग और पूर्ति का सिद्धांत आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से समझ लिया है तो अब आपको देखना होगा कि ये हमारी सोसाइटी में अभी अप्लाई कैसे हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में वो कैसे काम कर रहा है। तो उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे सैद्धांतिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यह है दोस्तों, अपने दिमाग में बिल्कुल साफ रखिए कि न्यूज के मामले में कोई भी शॉर्टकट के बारे में मत सोचिए। आपको एक कंप्लीट तैयारी अगर करनी है तो आपको न्यूज भी सुननी पड़ेगी और न्यूज पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मतलब मेरे पास तो दोस्त मित्रों कम से कम नहीं है। आइए अब हम न्यूज एनालिसिस पर आते हैं। दोस्तों आप दो तीन खबरें मैं छोटी छोटी चर्चा करूंगा, बहुत उस फॉर्म में आज कल खबरें नहीं थी जिनको लेकर के हम बहुत विस्तार से जा सके। एक आप देख रहे हैं कि तीन बार तलाक 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 कहने का जो मामला है और उसमें हलाला भी है, निकाह भी है, बहुविवाह प्रथा भी है, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो तीन तलाक के मामले को लेकर है। मैंने शुरू में भी कहा था कि अखबारों में इस बारे में काफी आ रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या पूछ रही है, इस पर भी खबरें आ रही हैं, इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कल की बातचीत से उभर कर आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकार से यह पूछा, क्योंकि सरकार आपको मालूम है कि सरकार तीन तलाक के विरोध में है कि नहीं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के जो मानवीय अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, समानता का जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल विपरीत है, मतलब संवैधानिक व्यवस्था की ये खिलाफ है, वो यही प्ली लेकर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ठीक है चलिए अगर तीन तलाक व्यवस्था को बंद कर दिया गया तो फिर वो जो मुस्लिम विवाह परंपरा है वो किस आधार पर फिर अधिनियमति होगी, यानी कि रेगुलेट कैसे होगी वो, फिर उसका बेस क्या रहेगा। अगर आप एक बेस ध्वस्त कर देंगे तो दूसरा बेस क्या है। उस पर सरकार ने तो कहा है कि नहीं जब ऐसा होगा तो फिर सरकार उसके लिए अलग से कानून बनाएगी। देखिए कि जैसे हमारे मतलब हिंदुओं में भी कानून है ना, विवाह का कानून है, उसी तरह से उसके लिए भी कानून बनाएगी। तो ये एक सरकार का एक साइड है, सरकार का एक दृष्टिकोण है, सरकार का एक विचार है जो मुख्य तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार इसको कैसे ले रही है। मित्रों जो दूसरी खबर है वो वैश्विक साइबर अटैक को लेकर है। दो दिनों से आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, साइबर अटैक हुआ है जिसे रैनसमवेयर वायरस कह रहे हैं। रैनसमवेयर वायरस मतलब जो कंप्यूटर को अपने कब्जे में अधिकार में ले लेता है, आपके सारे के सारे डेटा चुरा लेता है और इसके बाद फिर वो कहता है कि आप इतने पैसे दीजिए, इतने रुपए दीजिए और अगर आप $300 $400 आप देंगे तो आपका डेटा आपको वापस दे दिया जाएगा और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो सारा का सारा डेटा नष्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ये फिरौती उसी तरह से हो गया कि आपने किसी के बच्चे का अपहरण कर लिया, किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया, और फिर आप उससे फिरौती मांग रहे हैं कि अगर इसको जिंदा वापस चाहते हो तो आप इतना धन यहां लेकर के आ जाओ। एक विचित्र सी स्थिति, और ये बहुत ही जबरदस्त साइबर अटैक है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से जो आजकल डेटा, हम एक डेटा युग में रह रहे हैं। आज का जो युग है वो डेटा का ही युग है। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन, जानकारियां जो हमारे पास स्टोर्ड है, यानी डेटा का मतलब एक दो तीन चार पांच ही नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डेटा के फॉर्मेट में है। अगर वो इस तरीके से चला जाता है तो अब तो कम से कम हालत यह हो गया कि जैसे बिजली के जाने पर पूरे दुनिया की मशीनरी ठप हो जाएगी, इसी तरह से अगर कंप्यूटर खत्म हो गए आज तो पूरी की पूरी दुनिया की जो कार्यवाहियां हैं वो ठप हो जाएंगी। चाहे वो विमान चल रहे हो, चाहे आपके बिजली के कारखाने, कौन सा ऐसा तंत्र है जो बिना कंप्यूटर के चल रहा है। और दोस्तों इस बारे में मैं भी आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। हिंदुस्तान, डेली हिंदुस्तान ने एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट इस पर किया है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। खासकर मैं ध्यान आपका इस इधर दिलाना चाहूंगा कि साइबर जो अटैक है, साइबर अपराध जो है, वो आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में बकायदे है, और केवल सिलेबस में ही नहीं है बल्कि इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और चूंकि यह इतना बड़ा अटैक हुआ है तो स्वाभाविक है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देखिए यह विज्ञान का विषय है, नो डाउट कि विज्ञान के स्टूडेंट थोड़ा सा इस मुद्दे को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी इसका जो जनरल नॉलेज का फॉर्मेट, एक सामान्य जानकारी है, वो सभी विद्यार्थियों के पास होना चाहिए, सभी स्टूडेंट के पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब की जो पीढ़ी है जो पढ़ाई कर रही है बिना कंप्यूटर के वो नहीं है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, वो भी कंप्यूटर का एक फॉर्मेट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये साइबर अटैक क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कैसे सिस्टम को प्रभावित करता है, ये सब क्यों होते हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लीज इस पर ध्यान दें। मित्रों एक जो खबर थी जो मुझे एक इंपॉर्टेंट खबर लग रही है, वैसे तो बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है, फिर भी सिविल सर्विस में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है मित्रों जन भागीदारी को लेकर। मैंने कल भी इस चर्चा की थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी कल अमरकंटक में थे, जहां से नर्मदा जी निकलती हैं, और वहां उन्होंने अपने उद्बोधन में जन भागीदारी की बात कही, क्योंकि नर्मदा के सफाई अभियान में जो नर्मदा सेवा यात्रा का जो आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 25 लाख लोगों ने उस यात्रा में भाग लिया और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके समापन अवसर पर गए थे, तो ये बेसिकली नर्मदा नदी को स्वच्छ करने और फिर स्वच्छ बनाए रखने के बारे में लोगों के सहयोग का एक बहुत अच्छा उपक्रम था। इसी को कहते हैं पीपल पार्टिसिपेशन। मित्रों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं वो इससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे कि किस तरीके से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो करेक्टर है धीरे धीरे चेंज होते होते अब वो पब्लिक पार्टिसिपेशन के लेवल पर पहुंच गया है। पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अंग्रेजों के जमाने का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अफसर सब कुछ है। इसके बाद जब हमारे यहां डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी में यह हो गया कि अफसर प्लस राजनेता सब कुछ है, उनके शब्द उनके वाक्य ही आदेश हैं और वही कानून है, बावजूद इसके कि हमारे पास संविधान भी है और हमारे पास कानून भी थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि उससे फिर जो भी संकट पैदा हुए, पूरी की पूरी दुनिया पर एक दबाव पड़ने लगा, लोगों का दबाव पड़ने लगा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी में लोगों का दबाव ही खत्म हो जाए तो फिर वो क्रेसी क्रेसी रह जाएगा, डेमो गायब हो जाएगा, तो लोगों के दबाव पड़ने लगे, तो फिर ट्रांसपेरेंसी की बात होने लगी, डिसीजन मेकिंग में लोगों के पार्टिसिपेशन की बात होने लगी कि भैया ऐसा नहीं है कि एक बार वोट दे दिया और फिर 5 साल के लिए अगले चुनाव का वो इंतजार कर रहे हैं और उनका कोई रोल प्रशासन में ना हो, लगातार दबाव बनने लगे। और ऐसा केवल भारत में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। मित्रों उसी के नतीजे के रूप में हमें अभी बहुत सी नई चीजें दिखाई दे रही हैं। आप जुडिशरी में आप देखते हैं जो पब्लिक लिटिगेशन है, जो हम जनहित याचिकाएं कहते हैं, वो इसी दबाव का परिणाम है। फिर आप देखिए कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट की डिमांड होने लगी, और एक खुशकिस्मती थी कि जैसे ही ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई वैसे ही ट्रांसपेरेंट की पद्धति को उसे बहुत आसान बना दिया। इसके बाद सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लगे, ये सब के सब जन भागीदारी के ही रूप है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जनभागीदारी है, सिविल सोसाइटीज जनभागीदारी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिविल सोसाइटीज, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, ये सब के सब आपके मेंस में सेकेंड पेपर जो है सिविल सर्विस का, उसमें मेंशन किए हुए हैं, अलग से मेंशन किए हुए हैं कि जिनके बारे में आपको पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से जानना है। और केवल पढ़ना जानना ही नहीं है, बल्कि आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि इन पर प्रश्न भी पूछे गए हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सच पूछे तो कुछ अधिनियम तक बने, और जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बेसिकली जन भागीदारी का ही एक रूप है कि वो आपसे पूछ सकते हैं, वो तंत्र से पूछ सकते हैं, प्रशासन से पूछ सकते हैं कि बताइए आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपका पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है, तो हमारे पैसे को कैसे खर्च किया गया है, सारी चीजों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कि आप दफ्तर में घुस ही नहीं सकते थे, और कहां आरटीआई कि अब फाइल में भी घुस सकते हैं। सी द चेंजेस, जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों को आपको थोड़ा सा गहराई से देखना होगा। तो दोस्तों, ये जो परिवर्तन आए हैं ये जन भागीदारी के रूप है। और फिर आप पीपीपी मॉडल पढ़ते ही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, मान करके चलिए कि लोकतंत्र की जो आत्मा है उसके बिना ही फिर लोकतंत्र चल रहा होगा, आत्मा रहित तंत्र चल रहा होगा, चाहे फिर उसे आप लोकतंत्र कह लें या जो भी तंत्र कहना चाहें कह लें। मित्रों, मैंने थोड़ी सी इसके बारे में बात इसलिए किया है क्योंकि यह समझ आपके जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है मेंस का, उसमें बहुत काम आएगा। और यहां तक कि ऐसे राइटिंग में भी ये अप्रोच आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। तो मित्रों, न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं आपको काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों के पास वक्त नहीं है कि हम उन क्लिपिंग्स पर बात करें। फिलहाल तो मैं बस यही कह सकता हूं कि जिसे आप जरूरी समझते हैं, जो आपको विषय के रूप में नया लगता है, प्लीज उसे आप देखें, समझने की कोशिश करें, और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अपने पॉइंट्स नोट भी कर लें। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण, जो ईमेल का चरण है। उस पर ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं। वे हैं चक्रपाणी तिवारी, सुनील सोनवाने पुणे महाराष्ट्र से, प्रीत पाल सिंह नानक नगर जम्मू से, त्रिविधा मिश्रा न्यू दिल्ली से, ईशु शर्मा दिल्ली से, रोहित चौहान हरिद्वार से, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, सौरभ पंसारी रायपुर छत्तीसगढ़ से, उमा उपाध्याय पश्चिम बंगाल से, चंदन शिमला हिमाचल प्रदेश से, भोगेंद्र कुमार दरभंगा बिहार से, गौरव शर्मा दिल्ली से, और प्रकाश गुलबर्गा कर्नाटक से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।